नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। अमिटी श्लेस की ग्रेट सोसाइटी, अ न्यू हिस्ट्री 1960 के दशक के अमेरिकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलावों का वैचारिक इतिहास है। पुस्तक का केंद्र लिंडन बी जॉनसन के ग्रेट सोसाइटी कार्यक्रम और गरीबी के विरुद्ध युद्ध पर है, लेकिन इसका दायरा केवल कानूनों की सूची तक सीमित नहीं रहता। श्लेस उन विचारों, संस्थाओं और व्यक्तियों को देखती हैं जिन्होंने संघीय सरकार को गरीबी, शहरों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नस्ली असमानता की समस्याओं का प्रमुख समाधानकर्ता बनाया। उनका मुख्य तर्क यह है कि नेक इरादों और व्यापक सरकारी हस्तक्षेप के बावजूद कई कार्यक्रमों ने निर्भरता, प्रशासनिक जटिलता और शहरी विघटन को बढ़ाया। लेखिका जॉन एफ कैनेडी, जॉनसन और रिचर्ड निक्सन के दौरों को एक निरंतर नीति प्रवाह में रखती है। इस दृष्टि से यह पुस्तक उदारवादी सुधारों की प्रशंसा या निंदा भर नहीं, बल्कि राज्य की क्षमता, नीति के अनपेक्षित परिणामों और राजनीतिक सहमति की सीमाओं की आलोचनात्मक जांच है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, ग्रेट सोसाइटी को आदर्शवाद और सरकारी विस्तार के संगम के रूप में पढ़ना। श्लेस के अनुसार, ग्रेट सोसाइटी उस समय की वास्तविक बेचैनी से निकली थी। अमेरिका में समृद्धि बढ़ रही थी, फिर भी ग्रामीण गरीबी, अश्वेत नागरिकों के साथ भेदभाव, जर्जर शहर और शिक्षा व स्वास्थ्य तक असमान पहुंच जैसे प्रश्न सामने थे। जॉनसन प्रशासन ने इन्हें अलग अलग स्थानीय समस्याएं नहीं माना, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हल की जाने वाली संरचनात्मक विफलताएं माना। परिणाम स्वरूप संघीय धन, नए कार्यालयों, अनुदानों और कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की भूमिका तेजी से बढ़ी। पुस्तक का विशिष्ट पक्ष यह है कि वह इस विस्तार को केवल जॉनसन की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं समझाती। वह बौद्धिकों, श्रमिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और योजनाकारों की उस व्यापक धारा को रेखांकित करती है जो मानती थी कि विशेषज्ञता और सार्वजनिक निवेश समाज को अधिक न्यायपूर्ण बना सकते हैं। श्लेस इस विश्वास की नैतिक गंभीरता स्वीकार करती हैं, पर इसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाती हैं। उनका जोर इस बात पर है कि किसी उद्देश्य की लोकप्रियता और उसकी प्रशासनिक व्यवहार्यता एक ही बात नहीं है। जब वाशिंगटन से बनी योजना स्थानीय परिवारों, नगरों और बाजारों की अलग स्थितियों पर लागू होती है, तो उसका परिणाम मूल उद्देश्य से भिन्न हो सकता है। इस तरह पुस्तक नीति की नियत के बजाय उसकी संस्थागत डिजाइन और वास्तविक प्रभाव को कसौटी बनाती है। दूसरा, गरीबी के विरुद्ध युद्ध और स्थायी निर्भरता की आलोचना। पुस्तक का एक केंद्रीय प्रश्न है कि गरीबी के विरुद्ध युद्ध ने गरीब परिवारों की स्वायत्तता बढ़ाई या उन्हें सरकारी तंत्र पर अधिक निर्भर बनाया। श्लेस विशेष रूप से उन कार्यक्रमों की आलोचना करती है जिनमें सहायता पाने की शर्तें काम, परिवार और स्थानीय जिम्मेदारी के लिए प्रतिकूल प्रोत्साहन पैदा कर सकती थीं। उनका तर्क यह नहीं है कि गरीबी काल्पनिक थी या सहायता अनावश्यक थी, बल्कि वे कहती हैं कि सहायता की संरचना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उसका बजट। यदि लाभ व्यवस्था कमाई बढ़ने पर तेजी से घटे, निर्णय दूरस्थ नौकरशाही करे और स्थानीय संस्थाएं केवल अनुदान लागू करने वाली इकाइयां बन जाएं, तो लाभार्थी के लिए आगे बढ़ने के रास्ते संकरे हो सकते हैं। श्लेस के वर्णन में ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जैसी संस्थाओं के पीछे उत्साह था, लेकिन उनका प्रभाव अक्सर राजनीतिक संघर्ष, कमजोर जवाबदेही और कार्यक्रमों की बहुलता से सीमित हुआ। यह विश्लेषण एक व्यापक नीति सिद्धांत प्रस्तुत करता है। किसी सामाजिक कार्यक्रम का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसने कितना धन खर्च किया या कितने लोगों को दर्ज किया, यह भी देखना चाहिए कि उसने रोजगार, पारिवारिक स्थिरता, स्थानीय पहल और दीर्घकालिक अवसरों पर क्या असर डाला। पुस्तक इसी कारण आज की आय सहायता और कल्याण नीतियों की बहस से जुड़ती है। तीसरा, शहरी नवीनीकरण, सार्वजनिक आवास और समुदायों के विघटन का प्रश्न। श्लेस शहरी नीति को ग्रेट सोसाइटी की सबसे कठिन विरासतों में रखती हैं। 20वीं सदी के मध्य में कई अमेरिकी शहरों में खराब आवास, नस्ली पृथक्करण और गरीबी गंभीर समस्याएं थीं। नीति निर्माताओं ने पुराने इलाकों को हटाकर बड़े सार्वजनिक आवास, राजमार्गों और नियोजित विकास के जरिए शहरों को सुधारने की कोशिश की। पुस्तक का आलोचनात्मक निष्कर्ष है कि इस दृष्टिकोण ने कई बार समुदायों के पहले से मौजूद सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को नजरअंदाज किया। किसी गरीब बस्ती में भवन जर्जर हो सकते हैं, लेकिन वहां रिश्तेदारी, छोटे व्यवसाय, चर्च, पड़ोस आधारित सहायता और काम तक पहुंच के अनौपचारिक साधन भी हो सकते हैं। जब पुनर्विकास इन्हें विस्थापित करता है, तो केवल मकान नहीं बदलते, जीवन संभालने वाले नेटवर्क भी टूटते हैं। श्लेस ऊंची इमारतों वाले सार्वजनिक आवास और केंद्रीकृत नगर नियोजन को इसी संदर्भ में देखती हैं। उनका कहना है कि भौतिक ढांचे पर खर्च अपने आप सामाजिक उन्नति नहीं बनाता। पुस्तक यहाँ बाजार के पक्ष में एक सरल नारा नहीं देती, बल्कि निर्णय की निकटता और स्थानीय ज्ञान के महत्व को उभारती है। शहरी सुधार के लिए सुरक्षा, रोजगार, परिवहन, विद्यालय और आवास को अलग खांचों में बांटने के बजाय उनके परस्पर संबंधों को समझना जरूरी है। यही तर्क वर्तमान शहरी पुनर्विकास योजनाओं के मूल्यांकन में भी उपयोगी है। चौथा, जॉनसन और निक्सन के बीच नीति निरंतरता का पुनर्मूल्यांकन। लोकप्रिय राजनीतिक स्मृति जॉनसन को उदारवादी विस्तारवादी राष्ट्रपति और निक्सन को उनके रूढ़िवादी प्रतिपक्ष के रूप में रखती है। श्लेस इस विभाजन को अपर्याप्त मानती है। उनकी पुस्तक दिखाती है कि निक्सन काल में भी संघीय सरकार की सामाजिक और आर्थिक भूमिका केवल पीछे नहीं हटी, बल्कि अनेक क्षेत्रों में बनी रही या आगे बढ़ी। इसलिए ग्रेट सोसाइटी को केवल एक प्रशासन या एक पार्टी की परियोजना मानना उसके दीर्घकालिक प्रभाव को कम करके देखना होगा। श्लेस के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 60 के दशक के अंत और 70 के दशक की शुरुआत तक यह व्यापक सहमति बन चुकी थी कि राष्ट्रीय सरकार को सामाजिक जोखिमों और आर्थिक असमानता के समाधान में केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए। निक्सन के दौर की नीतियां और प्रशासनिक निर्णय इस सहमति के भीतर ही काम करते दिखाई देते हैं, भले उनकी भाषा अलग रही हो। यह दृष्टि पाठक को चुनावी लेबलों से आगे बढ़कर संस्थागत निरंतरता देखने के लिए कहती है। नीति बदलाव को समझने में केवल घोषणा पत्र या भाषण पर्याप्त नहीं होते। बजट, नियामक अधिकार, पात्रता नियम और नई एजेंसियों की स्थायित्व क्षमता अधिक निर्णायक हो सकती है। इस विषय के जरिए पुस्तक यह भी समझाती है कि एक बार बने अधिकार कार्यक्रमों को बदलना क्यों कठिन होता है। लाभार्थियों, प्रशासन और राजनीतिक समर्थन के कारण वे भविष्य की नीति संभावनाओं और वित्तीय प्राथमिकताओं को आकार देने लगते हैं। अंत में वियतनाम, आर्थिक दबाव और घरेलू सुधारों की सीमित क्षमता, श्लेस ग्रेट सोसाइटी को घरेलू नीति की अलग कहानी नहीं मानती। वे इसे वियतनाम युद्ध, मुद्रास्फीति, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और बदलती अमेरिकी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ती हैं। जॉनसन प्रशासन ने युद्ध की भारी लागत और घरेलू महत्वाकांक्षाओं को एक साथ संभालने की कोशिश की। पुस्तक के अनुसार यह संयोजन राजनीतिक ध्यान, सार्वजनिक विश्वास और आर्थिक संसाधनों पर दबाव डालता गया। जब सरकार एक साथ सैन्य संघर्ष, गरीबी उन्मूलन, शहरी पुनर्निर्माण और नए अधिकार कार्यक्रमों को चलाती है तो प्राथमिकताओं का स्पष्ट निर्धारण कठिन हो जाता है। श्लेस यह भी रेखांकित करती हैं कि उस दौर में अमेरिकी उद्योग और श्रमिक संगठनों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा तथा नई तकनीक के बदलावों का सामना था। ऐसे में घरेलू कार्यक्रमों की सफलता केवल सरकारी खर्च से तय नहीं हो सकती थी। रोजगार के अवसर, शहरों की लागत, उद्योगों की प्रतिस्पर्धा और शिक्षा की गुणवत्ता भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। इस विश्लेषण से पुस्तक का बड़ा सबक निकलता है कि सामाजिक नीति को व्यापक आर्थिक वातावरण से काटकर नहीं आंका जा सकता। अच्छी मंशा वाले लाभ तब भी कमजोर पड़ सकते हैं जब अर्थव्यवस्था पर्याप्त अवसर न बना रही हो या युद्ध जैसी बाहरी प्रतिबद्धताएं राज्य की क्षमता को खींच रही हो। श्लेस की व्याख्या, इसीलिए कार्यक्रमों की विफलता को एक कारण से नहीं बल्कि परस्पर दबावों के परिणाम के रूप में देखती है। निष्कर्ष में, ग्रेट सोसाइटी अ न्यू हिस्ट्री उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अमेरिकी इतिहास, कल्याणकारी राज्य, शहरी नीति, सार्वजनिक वित्त या समकालीन वैचारिक बहसों को ऐतिहासिक संदर्भ में समझना चाहते हैं। यह पुस्तक उन लोगों को भी लाभ दे सकती है जो मानते हैं कि किसी नीति की नैतिक अपील और उसके वास्तविक परिणामों को अलग अलग परखना चाहिए। श्लेस का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से सरकारी विस्तार के प्रति संशयपूर्ण है, इसलिए पाठक को इसे अंतिम निष्पक्ष निर्णय के बजाय एक तर्कपूर्ण व्याख्यात्मक इतिहास के रूप में पढ़ना चाहिए। फिर भी इसकी ताकत इसी में है कि यह ग्रेट सोसाइटी को केवल महान कानूनों की उपलब्धि सूची या केवल विफलता कथा नहीं बनने देती। यह विचारों, व्यक्तित्वों, संस्थाओं, युद्ध, शहरों और आर्थिक परिवर्तनों को एक ही विश्लेषण में जोड़ती है। समान विषय की कई पुस्तकें किसी एक कार्यक्रम, राष्ट्रपति या नागरिक अधिकार संघर्ष पर केंद्रित रहती हैं। श्लेस की पुस्तक व्यापक राजनीतिक सहमति और उसके दीर्घकालिक संस्थागत परिणामों पर अधिक ध्यान देती है, खासकर जॉनसन और निक्सन के बीच निरंतरता पर। पाठक इससे प्रोत्साहनों, स्थानीय ज्ञान, प्रशासनिक जवाबदेही और बजटीय प्रतिबद्धताओं के बारे में अधिक सटीक प्रश्न पूछना सीख सकता है। इस अर्थ में पुस्तक का सबसे उपयोगी योगदान तैयार उत्तर देना नहीं बल्कि यह याद दिलाना है कि बड़े सामाजिक लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्यक्रम की डिजाइन, आर्थिक परिस्थितियां और समुदायों की वास्तविक संरचना निर्णायक होती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एमिटी श्लेस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।